ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் முண்டகோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ சிவ் சரூப்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
சிருஷ்டி கே சம்பந்த மே விகல்ப பி பஹுத் ஹை, உன்கோ பி ஆப்கோ சங்க்ஷேப் மே பதா தூ. आप ये वेदांत के सिद्धांत और उपनिषदों में तो सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न मानते हैं, और वेद में ही वेद जो वेद है ना, जैसे असदेव इदम अग्रासीत, ये भी वचन है व्याकरण के आरंभ में, छांदोग में भी है, असद से सृष्टि हुई है ऐसे बोलते हैं. असदेव इदम अग्रे आसीत, इस सृष्टि के पहले असद था. तो ये जो अन्य अन्य दार्शनिक हैं उनके भी बीज वेद में ही मिलते हैं, उनकी कोई कल्पना नहीं है. पर ये बात है कि उन्होंने ठीक से विचार नहीं किया होगा, तो इसलिए अब असत का अर्थ होता है वहां जो असत भाष्य में जो लिखा है कि असत माने होता है कि नाम रूप से रहित था पहले, ये असत है. उन्होंने सोचा कि ये शून्य से ही सृष्टि हुई. तो कुछ लोग शून्य से मानते हैं, कुछ लोग प्रकृति से मानते हैं, सांख्य योग प्रकृति से मानते हैं, उसका भी निषेध करते हैं. इच्छते ना शब्दम, मैंने इसका खंडन इस प्रकार से करते हैं कि नहीं, इच्छण प्रकृति में संभव नहीं है. वेदांत के सूत्रों में ये खंडन वेद व्यास ने किया कि परमा तदैच्छत है ना, उसने इच्छा किया सृष्टि की रचना की, जैसे आपको अभी सुनने को मिलेगा. तो जब वह इच्छण किया तो प्रकृति में इच्छण संभव नहीं हो सकता है, ऐसा कह करके वेद व्यास ने, विचारकों ने, महापुरुषों ने प्रकृति से सृष्टि का निषेध किया है कि नहीं, प्रकृति से नहीं होती है, न परमाणु से होती है. लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति का भी एक वैचित्र है. देखो, कहीं त्रिविध करण है, माने तीन भूतों से उत्पन्न होती है, और कहीं पांच से उत्पन्न होती है, और कभी किसी से कभी किसी से इसकी उत्पत्ति भी विचित्र ढंग से होती है. पर यहां प्रसंग में, प्रकरण में, ये सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न होती है. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते एन जातानि जीवन्ति यम अभिसंवसन्ति, ये परमात्मा से सृष्टि उत्पन्न होती है, उसी में स्थित होती है, उसी में लय होता है. इस प्रकार से ये सृष्टि की उत्पत्ति बताई, और ये सृष्टि की उत्पत्ति इसलिए बताना चाहते हैं कि जिससे इस सृष्टि से अपने को न्यारा समझ सके. ये जो प्राकृतिक प्रपंच है, परमात्मा से जो उत्पन्न हुआ है, दृष्टादृश्य का विचार जिससे आरंभ होता है, यदि दृश्य ही न होगा तो दृष्टादृश्य का विचार भी कैसे होगा ना. तो ये विचार से हम एक निष्कर्ष में, अपने लक्ष्य में, अपने ध्येय तक पहुंच जाते हैं सरलतया, सहजतया. वो दृष्टादृश्य का विचार सृष्टि को लेकर के ही होता है, इसीलिए सृष्टि का वर्णन किया गया है. सृष्टि की उत्पत्ति में वेदांत का या वेद का तात्पर्य नहीं है, सिर्फ सृष्टि के माध्यम से परमात्मा को व्यक्ति समझ जाए. अब आप देखिए कितनी सुविधा हमको समझ में हो गई, अपना शरीर उत्पन्न हुआ, इससे बहुत सुविधा अपने को समझने में हो गई. आप देखिए कि ये दृष्टा और दृश्य दो चीजें हो गई. जो जो चीज जानी जाती है वह सबकी सब दृश्य होती है, और जो जो जिससे जाना जाता है वो दृष्टा होता है. दृष्टा दृश्य है ना. तो ये देखो, इसमें जो सुषुप्ति आदि अवस्थाएं आती हैं, इन अवस्थाओं से परमात्मा न्यारा रहता है. आप बहुत गहराई से, बड़ी सावधानी से, सीरियस होकर के नहीं सुनते हैं इसलिए बहुत बार सुनने के बाद भी ध्यान नहीं आता है कि ये सुषुप्ति से सुषुप्ति का प्रकाशक ये किस प्रकार से तीनों अवस्था में है, ये बात मालूम नहीं पड़ती है। क्यों नहीं मालूम पड़ती है कि ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शन, गांव को कोई जा रहा था तो तृण भी स्पर्श हो रहे थे। तो नारायण, इसी प्रकार से हमारी यहां उपस्थिति स्थिति होती है। हम सीरियस होकर के वेदांत के विचार के लिए नहीं बैठते हैं। जैसे कि कल भी आपसे ये बात कही गई थी कि कच्ची धीरा है, धीर पुरुष उस परमात्मा को देखते हैं जो अधीर हैं, विषयों से व्याकुल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, संसार की परिस्थिति से, पद से, प्रतिष्ठा से, पैसे से, जो कार से, तार से, तिहार से, तो उनकी बुद्धि में बात बैठती नहीं है। अने सुस्पष्ट है परमात्मा, जितना सरल है, जितना परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, उतनी दुनिया की प्राप्ति सुगम नहीं है। क्योंकि दुनिया में बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं। जिसको आप चाहते हो उसको दूसरा चाह रहा है, तीसरा चाह रहा है, हजारों लोग चाह रहे हैं, उनसे संघर्ष करना पड़ता है, उनकी काट के लिए अपनी अकल लगानी पड़ती है। तो परमात्मा के लिए ऐसी कोई बात नहीं। तो सुषुप्ति से न्यारा है परमात्मा, जागत में जो परमात्मा है वही सुषुप्ति में है, ये भी बात है। क्योंकि जो दृष्टा होगा वह दृश्य से तो अलग ही रहेगा, तो सुषुप्ति दृश्य होती है, दृष्टा अलग होता है। एक इसमें और बात समझने की है कि जो दृष्टा है उस दृष्टा के साथ सत जोड़ दीजिएगा। यदि सत नहीं जुड़ेगा, सत नहीं होगा दृष्टा, तो क्षणिक हो जाएगा। और जब हम सत जोड़ देंगे उसके साथ में, दृष्टा के साथ में, दृष्टा सत है और सत दृष्टा है, यदि सत दृष्टा न होगा तो अचेतन हो जाएगा सत आपका। इसलिए सत के साथ दृष्टा का होना जरूरी है और दृष्टा के साथ सत का होना जरूरी है। यदि दृष्टा के साथ सत न होगा तो क्षणिक होगा या असत हो जाएगा, और यदि सत के साथ दृष्टा न होगा तो सत जड़ हो जाएगा। तो आपको ये कह रहा था कि सुषुप्ति में, हाँ, तो इस ये बात आपको इसलिए बताई कि जो सुषुप्ति में रहता है, सुषुप्ति का प्रकाशक, वही जागृत में भी रहता है। क्योंकि सुषुप्ति के दृष्टा के साथ सत है, इसलिए जो सत चीज होती है वह परिवर्तनीय होती है, दृष्टा के साथ है। सिर्फ सत नहीं, दृष्टा है। यदि सिर्फ सत मानोगे, दृष्टा नहीं मानोगे, तो अचेतन जड़ हो जाएगा। समझ में आती है बात की? नारायण नारायण। अब आइए, तो सुषुप्ति से न्यारा है, स्वप्न से न्यारा है, जागृत अवस्था से न्यारा है, ये अवस्थाएं हम नहीं है। इसी प्रकार पंचकोश के संबंध में विचार चंद्रोदय में, विचार सागर में, पंचदशी में, इस प्रक्रिया ग्रंथों में इस प्रकार से नारायण दृष्टादृश्य का विचार करके और उस दृश्य को श्रुति लिखाना चाहती है। तो वो बात हमारी यदि समझ में आ जाए दृष्टादृश्य की, तो फिर कुछ समझना शेष नहीं रहेगा। अब देखो, ये शरीर है, इसमें पांच कोष हैं जी, माने कमरे के अंदर कमरा, कमरा के अंदर कमरा, कमरा के अंदर कमरा है। एक बड़ा हाल है, फिर उसमें एक और छोटा सा हाल की अपेक्षा कमरा है, उसके अपेक्षा और एक छोटा सा कमरा है, उसके अपेक्षा एक छोटा सा और कमरा, पांच कमरे हैं इसमें। आप देखिए इन कमरों के माध्यम से, जैसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और ये आपका आनंदमय, पांच कोष है। इन पांच कोषों में वह परमात्मा निवास करता है। ये मैं जिसके साथ जुड़ जाता है, अन्न के साथ जुड़ता है, शरीर के साथ जुड़ता है, तो अन्नमय होता है, और प्राण के साथ जुड़ता है तो ये प्राणमय हो जाता है, मन के साथ जुड़ता है तो मनोमय हो जाता है, संकल्प विकल्प के साथ जुड़ेगा तो मनोमय हो जाएगा। यदि कर्ता के साथ विज्ञान के साथ जुड़ेगा तो विज्ञानमय हो जाएगा, यदि आनंद के साथ जुड़ेगा तो आनंदमय हो जाएगा। तो आप है इन पांचों कोषों से ये न्यारा रहता है। अब आप इनके स्वरूप पहले समझ लीजिए कि ये जो हमारा हाथ है या जो शरीर है, इसमें जो भारी चीज है वो मिट्टी है, उसी को अन्न कहते हैं। और इसमें जो ये हिलाने की शक्ति है, ये जो हिलता है हाथ है, ये क्या है? वायु हिलाता है ना, वायु हिलाता है तो उसको प्राणमय कहते हैं। हाँ, और जो इच्छा करता है हिलाने की उसको क्या कहते हैं? मनोमय कहते हैं। अच्छा, यदि मनोमय हो और अन्नमय भी हो वह, और यदि प्राण न हो वह, तो इच्छा होने पर यह हाथ नहीं हिलेगा, क्योंकि यह हाथ अन्नमय हो गया और इच्छा तो है हमें हाथ हिलाने की, पर इसमें प्राण नहीं है तो ये नहीं हिल रहा है। तो एक कड़ी और हो गई, तो ये तीन चीजें हो गई। और फिर जब ये हिला, तो जब विज्ञान में आया कि मैंने हाथ को हिलाया, तो वो कर्ता को ही विज्ञानमय कहते हैं। और जब उसको आनंद आया हाथ उठाने में, तो उसी भोक्ता को आनंदमय कहते हैं। इन पांचों कोषों से जुदा है, न्यारा है, और पांचों कोषों में रहता है। विचित्र बात है, इनसे जुदा भी है और इन सब में रहता है, वो व्यापक है। तो आप चाहे यहां बैठे तो भी आपके साथ है वो सत, वहां बैठे तो भी आपके साथ है। देश बदलने पर वो सत नहीं बदलता है, काल बदलने पर, अभी जो आप 8-15 में हैं, 8-20 में भी आप ही रहेंगे, इसके पहले भी आप ही थे, तो काल बदल जाने पर भी ये सत नहीं बदलता है। कैसे ज्ञात हो हमको? तो ज्ञात ऐसा करना है कि आप जब घर से 7 बजे चले थे, 7:30 बजे चले, चलो 7 बजे, और यहां बैठे हैं, अब आपको ज्ञात हो रहा है ना कि 7:30 बजे हम घर में थे। तो जब 7:30 बजे घर में थे आप, यहां स्मृति हो रही है, तो जो घर में स्थिति का प्रकाशक था, घर में रहने का जो प्रकाशक था, वही यहां भी है, इसलिए उसको स्मरण हो रहा है कि उस समय में वहां था। तो देश के बदलने से भी नहीं बदलता, अभी यहां है, फिर थोड़ी देर में दूसरी जगह होंगे तो दूसरी जगह भी आप होंगे। देश बदल जाएगा, काल बदल जाएगा, कर्म बदल जाएगा, व्यक्ति बदल जाएगा, दुनिया सारी बदल जाएगी, पर ये बदलाव सब सत में होता रहता है, सत नहीं बदलता है, उसी से ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। अब अगला प्रसंग देखिए, आइए। यह सर्वज्ञ नारायण तपसा चीयते ब्रह्मा ततो अन्यामभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकाः कर्मसु चामृतम्। अब ये ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला जो जगत है, वह किस क्रम से उत्पन्न होता है? बेतरतीब नहीं है। यद्यपि कहीं कहीं ऐसा भी आता है, होता है कि जैसे स्वप्न के कोई तरतीब नहीं होते हैं, इसी प्रकार से स्थिति होती है, पर यहां एक तरतीब बताते हैं, क्रम बताते हैं उत्पत्ति का। ये अनपेक्षित नहीं है। ये भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जैसे बेरों की मुट्ठी है, बेर, चलो चना के ले लीजिए, पर चना की इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यहां भगवान शंकराचार्य ने लिखा है युगपत बद्र मुष्ठी। अब मैं कह दूं चना फेंक देते हैं तो जैसे वो पटांग उग जाते हैं, इस प्रकार से नहीं है सृष्टि। आपको इससे अलग इसलिए नहीं बता रहा हूं, एक बार मैं यहां प्रवचन कर रहा था, ये आपके जेबी नगर में ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय चल रहा था, तो उसमें आया था कि जैसे लोहमणि से बने हुई चीजें लोहमणि से भिन्न नहीं होती हैं, तो आपने कह दिया कि भाई जैसे लोह से बनी चीजें लोह से भिन्न नहीं होती हैं। ये छांदोग का प्रकरण था, तो एक सज्जन ने कहा कि नहीं, लोहमणि का अर्थ लोह नहीं होता है, स्वर्ण होता है, जी, तो ये जो श्रोता होते हैं ये भी बड़े विचित्र होते हैं भी, अपने को तो सिर्फ इतना ही लेना है ना, दृष्टांत में इतना ही समझना है ना कि भाई जो जिससे उत्पन्न होता है वो उससे भिन्न नहीं होता है। स्वर्ण से उत्पन्न होगा तो चीजें स्वर्ण से भिन्न नहीं होंगी, और लोह से उत्पन्न होगी तो लोह से भिन्न नहीं होंगी, और मिट्टी से उत्पन्न होगी तो मिट्टी से भिन्न नहीं होगी, तो परमात्मा से उत्पन्न होगी तो परमात्मा से भिन्न नहीं होगी। तो दृष्टांत तो समझने के लिए होता है, कोई सिद्धांत तो होता नहीं, दूसरा भी हो सकता है। तो इसलिए यहां भगवान शंकराचार्य ने कहा कि जैसे बेरों को फेंक देता है और एक साथ महाराज उत्पन्न होते हैं, तो ये यहां नियम से क्रम से सृष्टि उत्पन्न होती है। सो आपको बताते हैं, तपसा चीयते ब्रह्मा, पहले परमात्मा ने तप किया, किस लिए? सृष्टि की उत्पत्ति के आरंभ में परमात्मा ने तप किया। कौन सा तप किया? शिरोव्रत किया कि चंद्रायण किया कि कृच्छ किया कि पंचाग्नि तापी, क्या किया? नहीं, पहले सृष्टि, सिर्फ पहले परमात्मा था, सिर्फ परमात्मा, और परमात्मा माने सिर्फ पहले ज्ञान था। अब जब इस सृष्टि की उत्पन्न होने का समय आया तो परमात्मा सृष्टि को पहले ध्यान में लिया, बस ध्यान का जो ज्ञान है, ज्ञान जब ध्यान में आया वही तप है। इस ज्ञान में मयम तपा है ना, अर्थात ये सृष्टि की जो उत्पत्ति है, स्थिति है, और जो प्रलय है, वह पहले उनके ध्यान में आया। ज्ञान से तो कुछ नहीं होता है, ज्ञान तो सिर्फ प्रकाशक है, सिर्फ प्रकाशक जी। पर ध्यान जब आया सृष्टि का तो फिर सृष्टि का क्रम आरंभ हो गया। जैसे एक उदाहरण में जो मैंने महापुरुषों की पुस्तक में पढ़ा है, बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे व्यक्ति बैठा हुआ है, सिर्फ बैठा हुआ है और ज्ञान है उसका, सिर्फ ज्ञान है और कोई वृत्ति अभी नहीं उठ रही, और कोई व्यक्ति उसके ध्यान में आ गया। अब वो ध्यान से ज्ञान कट गया क्योंकि अब व्यक्ति ध्यान में आ गया जी। तो अब उस व्यक्ति का ध्यान करने लगा, उसकी सकल सूरत को, उसकी स्थिति को, उसको सब देखने लग गया। तो परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में पहले ध्यान किया, उसी को वो ज्ञान में ध्यान आया। किसका ध्यान आया? तो इसमें बोलते हैं भाष्य में, नारायण नारायण, तपसा ज्ञानेन ज्ञानोनुत्पत्ति विधिज्ञतया भूतान अन्यक्षरम ब्रह्मचीयते। इन्होंने कहा कि तप के द्वारा, तप ज्ञान के द्वारा, विशेषण तप ज्ञाने न, ज्ञान के द्वारा कहते हैं उत्पत्ति विधिज्ञतया भूत योनक्षरम ब्रह्मचीयते उपचीयते, माने थोड़ा सा उपचिती हुई। जैसे उदाहरण के लिए बीज डाल दीजिए पृथ्वी में, तो बीज फूलेगा कि नहीं फूलेगा? जब कुछ बनने को होगा, जब अंकुर आने को होगा, उसके पहले फूलेगा। तो इसी प्रकार से परमात्मा के तप से पहले उपचिति हुई परमात्मा में ये, और इसके बाद बोलते हैं कि जगत अंकुरो मीवा। इसके बाद है, इसके बाद कहते हैं सर्वज्ञतया सृष्टि स्थिति संहार शक्ति विज्ञानवत तयोपचितत्वात् ततो ब्रह्मणो अन्नम। इसके बाद अन्न उत्पन्न हुआ, अव्याकृत उसे कहते हैं। इसमें संक्षेप में आपको बता दूं, उसको अव्याकृत कहते हैं जो समस्त भूतों को व्यक्त करने की अवस्था है, उसको क्या कहते हैं? वृष्टि, जो ये भूत हैं उन वृष्टि भूतों को अभिव्यक्त करने की जो अवस्था है समष्टि परमात्मा में, उसको अव्याकृत कहते हैं, अव्याकृत। फिर अव्याकृत से क्या हुआ, उस अव्याकृत से फिर अन्न की उत्पत्ति हुई, अन्न की। ये बोलते हैं अव्याकृतात् व्याचिकित्सितावस्थातः अन्नात्, इसी को अन्न कहा है, अव्याकृत को अन्न कहा है। तो इसी से सारी सृष्टि अभिव्यक्त होती है। इस अन्न से बोलते हैं फिर प्राण हुआ, जरा थोड़ा सा कठिन है, प्राण उत्पन्न हुआ। प्राण का अर्थ क्या हुआ, तो प्राण का अर्थ करते हैं कि जो हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ है, उस हिरण्यगर्भ में दो चीजें हैं, दो चीजें नहीं बल्कि पांच चीजें हैं। एक है उसमें हिरण्यगर्भ में ज्ञान शक्ति, एक है क्रिया शक्ति, और है ये दृष्टि जीवों की समष्टि है, ये हिरण्यगर्भ है, और इसी में काम है, कर्म है और फल है। इन सब से युक्त माने जीवों की समष्टि और काम काम कर्म और फल से युक्त हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, इसे प्राण कहते हैं, और प्राण से फिर मन हुआ कहते हैं जी। तस्माच्चा प्राणात् मनो मन, प्राण होगा तो मन होगा, और मन हो इनका दोनों का अनुन्यास है, अर्थात अभिनाभाव है। जहां प्राण होगा वहां मन जरूर होगा, जहां मन होगा वहां प्राण होगा। प्राण रुक जाएगा तो मन रुक जाएगा। समाधि में प्राण के रुक जाने पर, श्वास के रुक जाने पर मन की प्रतीति नहीं होती है, मन उछले ये संभव नहीं है, क्योंकि प्राणों को जो रोक करके प्राणायाम के द्वारा स्थित समाधि में होता है तो मन निष्क्रिय हो जाता है। और जितना ही प्राण चलेगा मन उतना दौड़ेगा। तो प्राण से मन की उत्पत्ति हुई, और फिर मन से, मन क्या, मन के संबंध में कहते हैं कि संकल्प विकल्प संशय निर्णय आद्य आत्मका भी जाए थे, माने संकल्प है, विकल्प है, संशय है, निर्णय है। हाँ, और भी बहुत से इसके रूप हैं, कोई 20-25 रूप मन के बताए हैं। तो ये मन उत्पन्न हुआ, इसी मन से कहते हैं कि अभिमान उत्पन्न हुआ। यहां अभिमान न कह करके अन्नात् प्राणो मनः, मनः सत्यम, सत्यम मन, मन यहां कहा है मंत्र में, पर भाषा आदि में अहंकार कहा, अहंकार की उत्पत्ति। अब यहां से शायद आपको बात समझ में आ जाएगी कि अहंकार से फिर ये सत उत्पन्न हुआ। सत माने पंच महाभूत उत्पन्न हुए। सत इसको क्यों कहते हैं, आपने वेद की भागवत में जब भगवान श्री कृष्ण की गर्भगत स्तुति देवताओं ने की है तो आया सत्यस योनिम आया, सत्य की योनि है। अब सत्य क्या, सत्य की योनि है तो ये भूत आदि माने आकाश आदि को सत्य बोलते हैं, कि ये घट आदि की अपेक्षा ये सत ही होते हैं। तो अहंकार से फिर सत माने इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। और फिर देखो अहंकार है ना, अहंकार के तीन प्रकार हुए, तेजस राजस और वैकृत, अर्थात सात्विक राजस और तामस तीन प्रकार का हुआ। ये तीन प्रकार का अहंकार होने से तीन प्रकार की सृष्टि हुई, कुछ सात्विक सृष्टि हुई, कुछ राजस हुई, कुछ तामस हुई। सो उसका विवरण इसमें नहीं है, प्रसंग बस जो है उसे आपको कहता हूं कि अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से पांच भूतों की उत्पत्ति हुई। पहले आकाश उत्पन्न हुआ। देखो अब ये जो अचिंत महामाया है उसकी वैचित्रता देख लीजिए, तो आपको ये आश्चर्य नहीं होगा कि एक परमात्मा से किस प्रकार से सृष्टि उत्पन्न हुई। आकाश से बोलते हैं कि फिर वायु की उत्पत्ति हुई। अब आप देखिए आकाश है, स्पर्श विहीन है, स्पर्श विहीन है, आकाश का स्पर्श नहीं होता है। जब चलते हो तो मालूम होता है क्या किया, स्पर्श हो रहा है आकाश। लेकिन उससे जो चीज उत्पन्न हुई है वो स्पर्श वाली हुई, वायु। तो ये विचित्र बात हुई कि नहीं? अच्छा चलो, आपको अभी विचित्र नहीं मालूम पड़ रहा है, वायु में तो देखिए वायु निरूप है कि नहीं, और वायु से आग उत्पन्न हुई कि नहीं, जिसमें रूप ही नहीं है। आप परमात्मा के संबंध में क्या सोचते हो? वहां तो कुछ सोचिए ही नहीं, वहां तो सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है। पर परमात्मा की माया क्या वैचित्र तो देख लीजिए कि जिसमें रूप ही नहीं है। यदि आप शास्त्र पर निष्ठा रखते हो, शास्त्र पर विश्वास रखते हो, तो वर्णन ऐसा आता है कि रूप रहित वायु से रूप वाला आग पैदा हुआ, जिसमें जो चीज ही नहीं है वो आग कहां से लाकर रख दिया ना। अब आप देखिए एक और वैचित्र बात की, आग रस रहित है, नीरस है, बल्कि रस की चीज कोई पड़ जाए तो उसको भी निरस कर दे, वह ऐसा तो उसका गुण है। तो रस रहित जो आग है वो रस वाला पानी को उत्पन्न किया, यही इसकी उत्पत्ति का क्रम है। और फिर आप देखिए ये जो आपका जल है तरल है, तरल है कि नहीं? आप चले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो तरल है बिल्कुल सरल है, वो इतनी कठोर पृथ्वी को उत्पन्न किया जिसमें कठोरता है ही नहीं। तो आपसे ये आप देखिए इस संबंध में कि परमात्मा की जो विचित्र अचिंत महामाया है उसके संयोग से इस प्रकार से पंचभूतों की उत्पत्ति हुई, उसी से कर्म की उत्पत्ति हुई, और कर्मों से ही फल की उत्पत्ति हुई। क्योंकि कोई कर्म नहीं करेगा तो उसको फल की प्राप्ति नहीं होगी, और फल को यहां अमृत कहा है, कर्म से चामृतम, कर्म में अमृत की उत्पत्ति कर दिया। अमृत का मतलब होता है जो मरे नहीं कभी, अर्थात इसका अर्थ यह होता है कि जो फल होते हैं ना, फल कर्म के फल होते हैं, वो व्यक्ति को कल्प कल्पांतर तक भोग के लिए बाध किए रहते हैं, इसलिए यहां इसको अमृत कहा है। इस प्रकार से आपका आठवां मंत्र हुआ। अब अगला प्रसंग आपकी सेवा में कल निवेदन करूंगा, समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।